कोई भी मनुष्य अपने आप पवित्र हो जाता है। भगवान का ऐसा दिव्य महाप्रभाव इस कथा के सप्ताह में श्रवण करने पर पता चला। श्री कश्यप मुनि बहुत बुद्धिमान हैं। अपनी पत्नी दीति के हिंसक विचार को इंद्र जी की हत्या करने वाला पुत्र चाहिए सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन तुरंत निश्चय किए यदि अदिति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेगी, एक वर्ष तक पुंसवन व्रत करेगी तो इसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, इसका क्रूर भाव चला जाएगा। तब कश्यप जी कृष्ण भक्ति करने के लिए बताए। कृष्ण का नाम जप करने से तथा पूजा करने से दीति माता के पुत्र अमर हो गए। भगवान इंद्र जब बच्चे को वज्र से मारे वह सात कुमार बन गए, फिर से एक एक पर वज्र से मारे तो वह 49 बन गए। दीति के सामने 49ों के साथ जब इंद्रदेव प्रकट हुए तो माता दीति को थोड़ा भी क्रोध न आया। गर्भ में इसने बच्चे को वज्र से काटा यह सुनकर भी क्रोध नहीं आया, उल्टे भगवान इंद्र पर स्नेह उमड़ गया और 49ों पुत्रों को इंद्र की सेवा में अर्पित कर दिया। अतः भगवान विष्णु की भक्ति करने से सब गुण आते हैं और दोष दुर्गुण चले जाते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में एक श्लोक आया है जिसमें ब्रह्मा जी के प्रति भगवान स्वयं कहते हैं, मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रथम, मत कथा प्रीत मनसम, नाहम त्यक्षामि तम नरम। मत कथा वाचकम नित्यम, जो सदा मेरी कथा कहता है। मत कथा श्रवणे रथम, जो सदा मेरी कथा सुनता है। मत कथा प्रीत मनसम, तथा जो मेरी कथा सुनने पर मन ही मन प्रसन्न होता है। तम नरम अहम न त्यक्षामि, मैं उस मनुष्य का कभी त्याग नहीं करता। ऐसे श्री भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण।
हरे रामा 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हम भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। हम भगवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इस महान भागवतम कथा सुनने का अवसर प्रदान किया। हम परीक्षित जी एवं श्री सुखदेव जी महाराज का भी धन्यवाद करते हैं। हम इस्कॉन एसोसिएशन के निर्माता श्री श्रीमद श्री भक्तिवेदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हम महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं जिन्होंने भगवान की कथाओं को, जो स्वयं में ही सुंदर और अत्यंत मधुर है, अपने सरल वचनों द्वारा और भी मधुर कर दिया। इस कथा के माध्यम से यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार महाराज कश्यप जी ने अपनी सूझबूझ से दीति महारानी के दुर्विचारों को भक्ति द्वारा दूर किया, उसी प्रकार हमें किसी को सुधारने के लिए दंड का सहारा ना लेते हुए भगवान श्री कृष्ण से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। हमें यह भी सीखने को मिला कि भगवान की कृपा से आसुरी स्वभाव मनुष्य भी देवता हो जाते हैं। जिस प्रकार दीति महारानी के शुद्ध एवं दृढ़ भक्ति के प्रभाव से उनके पुत्र देवता बन गए, इससे यह साबित होता है कि जीव में कितनी भी बुराइयां हो किंतु भगवान के नामों में ऐसी शक्ति है कि केवल नाम जप करने से अथवा श्री विग्रह रूप को नमस्कार मात्र करने से जीव शुद्ध हो जाता है। हमें यह सोचने में कि भगवान कौन है, वे कहाँ है, समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि सर्व आकर्षक परम कृपालु इस सृष्टि के स्थिति पालन और प्रलय करने वाले श्री विष्णु ही भगवान शब्द के वाच्य हैं। वे ही परम अधीश्वर हैं। उनके चरण कमलों रूपी नौका का सहारा लेकर हमें इस मृत्यु लोक के बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि जीवन में संकल्प उत्कंठा होनी चाहिए अपने कर्तव्यों को और भगवान की भक्ति को पूर्णतया शुद्ध रूप से करने की। हम महाराज जी को एक बार फिर धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते हैं कि वे इसी प्रकार समय समय पर हम सबको श्रीमद् भागवतम रूपी अमृत का पान कराते रहें। अंत में हम इस कार्यक्रम के आयोजकों का भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम सब यहाँ एकत्रित हुए और भगवान की कथाओं को, इतने सुंदर कथाओं को हमें सुनने का अवसर प्रदान हुआ। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज के अनुमोदन की शुरुआत मैं रहीम जी द्वारा रचित एक दोहे से करना चाहूंगी। सरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, रहीमन कहीं पर काज है, संपत्ति संच ही सुजान। जिस प्रकार एक फलदारी वृक्ष अपने मीठे फलों का आस्वादन स्वयं नहीं करता, और सरोवर यानी तालाब अपनी गोद में अर्जित जल को स्वयं नहीं पीता, उसी प्रकार महान जन, महान लोग संपत्ति अर्थात धन और ज्ञान को तो संचित करते हैं, पर उसे दूसरों के हित में लगा देते हैं। यही बात महाराज जी के विषय में भी कही जा सकती है, जो हर साल अपने अत्यधिक व्यस्त जीवन से हम जैसे बद जीवों के लिए समय निकालते हैं और भागवत सप्ताह के माध्यम से प्रत्येक दिन अपने अमृत रूपी वचनों द्वारा हमें आनंद विभोर करते हैं। वैसे तो महाराज जी और उनके ज्ञान के लिए कुछ भी कहना निस्संदेह सूर्य को दिया दिखाने के समान है, परंतु फिर भी मैं इस मंच पर आज इस संदर्भ में दो शब्द कहने की चेष्टा करूंगी। महाराज जी की तुलना हम एक पुष्प से कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार एक फूल अपनी सुगंध को बिना किसी भेदभाव के चारों ओर फैला देता है, उसी प्रकार महाराज जी ने भी अपने ज्ञान सागर की बूंदों को बिना किसी राग द्वेष के प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचने दिया और उनका उद्धार किया। मैं अपने आप को और यहाँ उपस्थित अन्य भक्तगण को बहुत सौभाग्यवती समझती हूँ कि हम एक ऐसे महान गुरु के संपर्क में आ पाए जिन्होंने हम सभी के हृदयों में कृष्ण भक्ति के बीज को बोया। भागवत सप्ताह के हर दिन मुझे कई बातें सीखने को मिली, लेकिन उनमें से मुझे महारानी दिति की कथा सबसे उत्तम लगी, क्योंकि जहाँ एक ओर यह भक्ति की शक्ति को दर्शाती है, वही दूसरी ओर हमें वाक चातुरिकता की कला भी सिखाती है। यह कथा हमें शिक्षा देती है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अपने संयम को नहीं खोना चाहिए। यदि कश्यप महाराज स्वयं पर काबू न रखते, अपनी वाक कला का प्रयोग न करते, तो शायद वह महारानी दिति के हृदय को कभी भी कठोर से कोमल न कर पाते। अंत में मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। मैं सुंदर और व्यवस्थित कथा के प्रबंधकों का भी धन्यवाद करती हूँ और महाराज जी से निवेदन करती हूँ कि वह इसी तरह प्रतिवर्ष हम पर अपने अमृत वचनों की वर्षा करते रहें, सदैव हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और नित्य हमें अपने चरण कमलों में जगह देते रहें। हरे कृष्ण।
श्लोक में गुरु की महत्वता का वर्णन किया गया है। गुरु हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर तथा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, हमारे नेत्रों को खोल देते हैं। उस गुरु को मेरा सादर प्रणाम। मुझे महाराज जी की कथा में बहुत आनंद आया, विशेष रूप से जब महाराज जी ने हमें यह बताया कि हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। दीदी महारानी ने क्रूरता पूर्वक एक ऐसे पुत्र की कामना की जो बदला ले सके, किंतु उनकी भक्ति इतना रंग लाई कि मारुत पुत्रों का जन्म हुआ। इसे हमें सीख मिलती है कि हमें अपना जीवन भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। भगवान के नाम तथा गुणों में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी जीव का हृदय परिवर्तन कर देते हैं। जिस प्रकार इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और उनकी अपनी ही विशेषता होती है, उसी प्रकार महाराज जी की 7 दिनों की कथा अलंकृत है। मरुस्थल में पानी की एक बूंद के समान इनके शुभ वचन हमारे अंधकारमय जीवन को प्रकाशमय कर देते हैं। अंततः मैं महाराज जी से निवेदन करती हूँ कि वो हमें प्रतिवर्ष अपने शुभ वचनों से हमें भगवान से प्रेम करने का अवसर प्रदान करते रहें। मैं महाराज जी तथा व्यवस्थापकों की बहुत आभारी हूँ तथा उन्हें धन्यवाद करती हूँ। हरे कृष्ण।
धन्यवाद।
का आयोजन हुआ, हम परम आराध्य श्रील प्रभुपाद जी के परम पावन चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं जिनकी कृपा से इस संसार में अनेक जीवों को भगवान श्री कृष्ण को समझने का एवं उनसे प्रेम करने का अवसर प्राप्त हुआ इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा। हम महाराज जी के चरण कमलों में भी प्रणाम करते हैं जो हमें श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं के विषय में बतलाते रहते हैं एवं हमारा उचित मार्गदर्शन करते हैं जिससे श्री कृष्ण में हमारा आकर्षण बढ़े। हम सभी वैष्णव वृंद के चरणों में भी प्रणाम करते हैं जो अपने दर्शन मात्र से सभी को पवित्र करते हैं एवं भगवान का स्मरण दिलाते हैं। कुंसवन व्रत कथा की मुख्य पात्र दिति महारानी है जिनके अंदर इंद्र जी के प्रति अत्यंत आक्रोश था क्योंकि उन्होंने हिरण्यकश्यपु एवं हिरणाक्ष का वध करवाया। सभी की पूजा अर्चना को स्वीकार करने वाले भगवान ही हैं जो भिन्न देवताओं का रूप धारण करते हैं और एक स्त्री के लिए पति रूप भी। लेकिन एक बात सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि देवी देवताओं में या पति में जब तक भगवान का भाव नहीं होगा तब तक उनके प्रति कोई भी सेवा असर नहीं दिखाएगी। लेकिन भगवान के साथ ये नियम लागू नहीं होता। एकमात्र श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जो बिना भाव के भी आराध्य हैं, बिना भाव के भी अपनी कृपा करते हैं जैसे शिशुपाल इत्यादि। सकृत दृष्टवादि पुरुषम पुरुषो चाति साम्यताम। जीवन में एक बार भी यद्यपि कोई व्यक्ति भगवान की पूजा करता है तो वह व्यक्ति भगवान की स्वरूपता को प्राप्त कर लेता है। वास्तव में देखा जाए तो ये कितनी बड़ी बात है। भगवान के साथ रहना, उनके रूप, उनके स्वभाव को प्राप्त करना कितना बड़ा सौभाग्य है। तो जिस माता ने लगभग एक वर्ष तक भगवान की पूजा की वो भी विधिवत, तो उस पे कोई संकट कैसे आ सकता है। इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि उस माता के पुत्रों को भगवान ने देवता बना दिया। ये है भगवान की उदारता। इंद्र एक श्लोक में कहते हैं, आराध्य आत्म प्रदम देवम स्वयं आत्मन जगदीश्वरम। भगवान जो कि जगत के ईश्वर हैं, सबके आराध्य देव हैं, वे प्रसन्न होकर अपने आप तक का दान कर देते हैं। तो इन भौतिक वस्तुओं को देने के विषय में क्या सोचेंगे। यही जीवन की सफलता है कि भगवान किसी प्रकार हमारी जीवा में, नेत्रों में, हमारी प्रत्येक इंद्रिय में स्फुरित हो, हमारे आचरण से, मन के विचारों से, हमारे कर्मों से किसी प्रकार भगवान प्रसन्न हो जाए। यद्यपि ऐसे कृपालु दयालु भगवान जिनको एक प्रणाम की तुलना अश्वमेध यज्ञ से नहीं की जा सकती के प्रति यद्यपि हमारा चित आकर्षित नहीं हो पा रहा, तो ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमें भगवान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाना चाहिए एवं उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए। हम सभी व्यवस्थापकों को, सेवकों को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ यहाँ पे सेवा की। हम महाराज जी का बहुत बहुत बधाई देते हैं एवं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, सब कुशल मंगल रहे और वे दिन प्रतिदिन भक्ति में आगे बढ़ते रहें एवं अगले वर्ष का इंतजार करेंगे जब इस स्थान पर पुनः विष्णु गाथा गाई जाएगी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं श्री श्री राधा कृष्ण भगवान को, श्री प्रभुपाद महाराज को तथा समस्त वैष्णव वृंद को प्रणाम करती हूँ। मैं महाराज जी को हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम जैसे निकृष्ट जीवों को महापुराण श्रीमद् भागवत में से यथा रूप भागवत संदेश सुनाया तथा हमें भक्ति को बढ़ाने तथा शुद्ध भक्ति करने का माध्यम बताया। महाराज जी ने इस भागवत कथा के प्रारंभ दिन श्रीमद् भागवत में से यथारूप बताया कि प्रजापति ने अपनी पत्नी से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए तथा उन्हें अत्यधिक संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, परंतु नारद जी ने उन्हें उनके जीवन के परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति को बताया और उन्हें संतान न उत्पन्न करने की सलाह दी। इस तरह प्रजापति दक्ष के सारे पुत्र प्रबुद्ध हो गए। पुत्रों की हानि पर प्रजापति दक्ष अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने अपनी पत्नी से 1,000 पुत्र और उत्पन्न किए, परंतु उन सब को भी नारद जी ने शिक्षा दी तथा वे सभी भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। इस प्रकार प्रजापति दक्ष की पत्नी से उत्पन्न 11,000 पुत्रों ने संतानें उत्पन्न नहीं की। इस पर प्रजापति दक्ष बहुत दुखी हुए तथा अब उन्होंने
अपनी पत्नी से 60 पुत्रियां उत्पन्न की तथा जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से वे विभिन्न पुरुषों को दान दी गई। नारद मुनि ने दक्ष की इन संतानों को स्त्री जाति के होने के कारण वैराग्य जीवन निर्वाह करने का उपदेश नहीं दिया। महाराज जी ने बहुत सरलता से हमें गिनाया कि इन पुत्रियों में से 10 धर्मराज अथवा यमराज जी को, 10 कश्यप मुनि जी को, 27 चंद्रदेव तथा 2 भूत अंगिरा तथा कृशाश्व को प्रदान की गई। फिर महाराज जी ने इन पुत्रियों के पवित्र नामों तथा इनके वंश के बारे में बताया। महाराज जी ने हमें बताया केवल इन नामों को मात्र सुनना ही बहुत अच्छा है तथा महाराज जी ने विशेष कर अदिति जी के पुत्रों के नाम बताए। विविस्वान अर्थ मापुरुषा त्वष्टा सविता भगा धाता विधाता वरुणो मित्र शत्रु अरुक्रमा। इसके बाद महाराज जी ने कश्यप जी की पुत्री दीति जी के वंश के बारे में बताया। जैसा कि इंद्र के कहने पर भगवान ने दीति के दोनों पुत्र हिणाक्ष तथा हिरण्यकश्यप का वध किया। इसके बाद महाराज जी ने राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर बड़े ही सरलता तरीके से बताया। महाराज जी ने हमें बताया कि राजा परीक्षित ने सविनय एवं संक्षेप में दीति के 49 मरुदेव के विषय में पूछा कि जन्म के कारण वे 49 मरुद असुरी वृत्ति से परिपूर्ण रहे होंगे तो फिर भी उन्हें स्वर्ग के राजा इंद्र ने उन्हें देवता क्यों बनाया, क्या उन्होंने कोई पुण्य काम या अनुष्ठान किया था। महाराज जी ने हमें बताया कि महाराज परीक्षित जी के इस प्रश्न की सुखदेव गोस्वामी से आराधना करते हुए इस प्रश्न का उत्तर दिया। महाराज जी ने हमें कश्यप जी की पत्नी दीति की कथा बताई कि किस प्रकार दीति जी ने इंद्र के वध के लिए पुत्र प्राप्त करने के लिए पुंसवन व्रत किया तथा महाराज जी ने बड़ी ही सरलता से इस व्रत करने का वर्णन किया कि किस प्रकार दीति 1 वर्ष तक भगवान की भक्ति करती रही परंतु एक दिन वह सेवा कार्य से विचलित हो गई अतः इंद्र उनके गर्भ में प्रविष्ट हुए और उनके पुत्र को 49 खंडों में काट डाला। महाराज जी ने इसका वर्णन बहुत ही सरलता पूर्वक किया तथा इस प्रकार 49 मरुद प्रकट हुए किंतु दीति ने वैष्णव अनुष्ठान किए थे इसलिए सभी पुत्र वैष्णव हो गए तथा इससे हमें समझना चाहिए कि हर व्यक्ति भगवान की भक्ति करके सब कुछ असंभव से असंभव वस्तु भी प्राप्त कर सकता है। महाराज जी ने हमें भगवान के बारे में तथा उनकी स्तुतियों के बारे में भी बताया। महाराज जी ने बताया कि भगवान पूर्ण मात्रा में 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। अंत में हम यही कहेंगे कि इस बार महाराज जी ने जितने ज्यादा हो सके श्लोकों को पूर्ण रूप से समझाया जिस कारण हम मूढ़ों की जड़ बुद्धि में कुछ कुछ समझ आया तथा हम महाराज जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं तथा सभी कार्यकर्ताओं तथा सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं तथा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे भगवान के माध्यम से तथा अन्य सभी सहयोगों के माध्यम से हम कलयुगी जीवों पर अपनी कृपा भावन सप्ताह के रूप में करते रहे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। धन्यवाद।
तत्पश्चात हम महाराज जी को भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हम भगवान जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि भगवान ने हमें हम जैसे भक्त जीवों पर अपनी कृपा बरसाई और हमें महाराज जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवतम सुनने का अवसर।
बहुत फास्ट मत पढ़ो, धीर गति से पढ़ो।
हमें बताया गया कि भगवान की भक्ति के अलावा और कोई पुण्य कार्य नहीं है। हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए, उनके अर्चन विद्या को देखना चाहिए, इससे अनादिकाल की अविद्या का नाश होता है और व्यक्ति शुद्ध होता है। जो व्यक्ति किसी भी तरह से भगवान की शरण में आते हैं वे धीरे धीरे शुद्ध होते हैं। यदि कोई एक भी दिन मनोभाव से भगवान की पूजा करता है तो उन्हें उनके धाम में आने का अवसर प्राप्त होता है। एक दिन पूजा करने वाली भगवान उसे अपने जैसा सुखी बनाते हैं। यदि परिवार का कोई एक भी व्यक्ति भगवान की पूजा करता है तो उसका सारा परिवार सुखी होता है। जिस प्रकार दीति ने 1 साल तक भगवान की पूजा की और उसके 49 पुत्र भी भगवान के भक्त बन गए, उन्हें स्वर्ग में वास मिला और वे इंद्र के अनुगामी हुए। क्योंकि भगवान की भक्ति करने से हर व्यक्ति को हर एक वस्तु की प्राप्ति होती है। भगवान की भक्ति से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। जो भगवान से केवल प्रेम चाहते हैं उन्हें तो भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। जीव का हमें यह जीवन भगवान की भक्ति करने के लिए और उनसे प्रेम करने के लिए मिला है, इसलिए हमें नित्य श्री जी के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्री भगवान को एक बार प्रणाम करने पर भी व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से छूटता है। हमारे मन में यह लालसा होनी चाहिए कि भगवान हमारे हृदय में आए और हम उनका जप करें। अंत में हम महाराज जी का फिर धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय निकालकर हमें इस भागवत कथा का श्रवण करवाया और उन्हें कथा को बहुत ही सुंदर और सरल ढंग से समझाया। हरे कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
इसके बाद प्रियंका तैयार है।
हरे कृष्णा। सर्वोपरि हम भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी जी श्री नरसिंह देव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात गुरु महाराज जी एवं समस्त एकत्रित भक्तों को हमारा सादर प्रणाम। हम परम पिता श्री कृष्ण जी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम सब पर अपनी असीम कृपा की और श्रील प्रभुपाद जी को अपना सेनापति बनाकर इस भौतिक जगत में हम जैसे माया विभोर जीवों को इस माया बंधन से बचने का और भगवान जी से जुड़ने का माध्यम बनाए। तत्पश्चात हम श्री गुरु महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना समय निकाला और यहाँ पे आकर 7 दिनों तक श्रीमद् भागवतम का अमृत तुल्य वर्णन किया। हमें यहाँ श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से कथा सुनकर बहुत आनंद आया। महाराज जी ने 7ों दिव्य दीति रानी और इंद्र और उनके मरुदगण की कथा इतनी सुंदरता और सरलता से व्याख्या की कि हमें छोटी सी छोटी बात भी समझ आई और हमारे हृदय में उद्भूत प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही हमें मिल गया। हमने यहाँ सीखा कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी जीवों द्वारा आराध्य हैं, पूज्य हैं। जीवों द्वारा प्रेम भावना श्रद्धा भावना से भगवान के प्रति किए गए छोटे से छोटे कार्य को भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं और बदले में बहुत कुछ दे देते हैं। जिस प्रकार सुदामा जी अपनी शक्ति अनुसार भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम से मात्र मुट्ठी भर चावल ही ले आए थे और भगवान जी ने उसे बड़ी विनम्रता से स्वीकारा था और सुदामा जी के कुछ ना मांगने पर भी उन्हें बदले में बहुत कुछ दे दिया था। अंत में एक बार फिर हम श्री गुरु महाराज जी को धन्यवाद देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे इसी प्रकार यहाँ पे आकर हमें भगवान की कथाओं से अवगत कराते रहें जिससे हम भी अपने जीवन में कुछ प्रगति कर सके। हम मंदिर से आए भक्तगणों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना सुंदर भजन कीर्तन करके हमें कथा सुनने के लिए उत्कंठित किया। हम कथा के आयोजकों एवं सेवकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस कथा का आयोजन कराया और उन्हीं के माध्यम से हम इस कथा को सुनने के लिए एकत्रित हुए। हरे कृष्ण।
सर्वप्रथम हम श्री श्री राधिका रमन भगवान जी के चरण कमलों में पंचांग प्रणाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इस भागवतम कथा सुनने योग्य समझा। हम श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदान
माइक के और निकट बैठ
स्वामी प्रभुपाद जी का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें सही अर्थ में भगवान की भक्ति का वास्तविक मार्ग दिखाया। तत्पश्चात हम महाराज जी को भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हम सबको श्रीमद् भागवतम महापुराण का ज्ञान दिया। इस कथा के माध्यम से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जानने को मिली किंतु उनमें से कुछ का वर्णन करना चाहेंगे। जैसे हमें प्रातः काल उठकर भगवान को प्रणाम करना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए क्योंकि भगवान के नाम मात्र से ही हम सब जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जिस प्रकार दीति महारानी के क्रूर विचारों को उनकी बुद्धि के दोषों को बदले की भावना को कश्यप महाराज जी ने भक्ति द्वारा समाप्त करने का प्रयास किया उससे यह समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि दुष्ट से दुष्ट विचार भी नष्ट हो जाते हैं। हमें हमेशा भगवान का कीर्तन शास्त्रों का अध्ययन करते रहना चाहिए जिससे निश्चय ही हमारा मन शुद्ध हो जाएगा जिस प्रकार दीति महारानी का हो गया। हम सभी का एकमात्र यही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे कार्यों से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो। यह बताया गया है कि यदि कुल का कोई एक भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तब वह कुल पवित्र हो जाता है। जिस प्रकार दीति महारानी की भगवान में दृढ़ भक्ति से उनके सारे पुत्र असुर से देवता बन गए।
हमें भगवान से कोई ना कोई संबंध स्थापित करना चाहिए, जिससे हमारा प्रेम भगवान जी में और भी घनिष्ठ हो। अंत में मैं इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने समय समय पर हमारे को भागवतम का आयोजन करके दिया और हमें भगवान की ओर और भी प्रेरित किया। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण।
अनंत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम हिज ग्रेस राधा गोविंद महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जो पिछले 3 सालों से अपना कीमती समय निकालकर हम लोगों को भागवतम कथा सुना रहे हैं। इस कथा में मुझे सबसे ज्यादा और हम सभी लोगों को जो सीखना चाहिए वो ये है कृष्ण भक्ति, एकमात्र कृष्ण भक्ति। क्योंकि इसमें हमने देखा कि दिति के जो पुत्र था वो गर्भ में उसे इंद्र मारने के लिए किस तरह से प्रयास कर रहा था और किस तरह से भगवान श्री कृष्ण उस पुत्र की रक्षा कर रहे थे। दिति आराम से सोई हुई थी, उसे कुछ नहीं पता था कि उसके गर्भ में क्या हो रहा है और किस तरह से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। दिति ने 1 साल का पूरा व्रत रखा और उसका क्या उनको परिणाम मिला कि दिति के पुत्र का कुछ बाल भी बांका नहीं हुआ। तो हमें हर हाल में कृष्ण भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जैसे कि भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने यह कहा है कि कौन्ते प्रति जानी ना मे भक्ता प्रदर्शति, कि है कुंती पुत्र निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्ता कभी भी विनाश नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अनश्वर हैं और उनके भक्त भी अनश्वर हैं, तो हमें एकमात्र कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मन मना मत भक्तो मध्या जी माम नमस्करु मामे यशस्वी युक्तेव आत्मा नम मत प्राणा, कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को कि अपने चित्त को निरंतर मुझ में लगाओ, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो और मेरी ही पूजा करो, मेरी ही। भगवान ये नहीं कह रहे कि किसी की भी कर लो, सिर्फ कह रहे हैं मेरी ही पूजा करो। और फिर वो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से आप मुझे प्राप्त करोगे। तो मैं हर हाल में हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी ही करनी चाहिए। हमें ये मनुष्य शरीर मिला ही बहुत मुश्किलों से है, देवी देवता है वो भी इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि जो देवी देवता होते हैं उनको भी बिल्कुल समय नहीं होता कि वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सके। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं और चैतन्य महाप्रभु हैं जो 500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ही दोबारा वापस आए। उन्होंने कहा कि इस कलयुग में अगर इस कलयुग ये जो कलयुग है ये समस्त दोषों से भरा हुआ है, लेकिन इस कलयुग में एक सबसे बड़ा गुण यही है कि जो मेरे नामों का कीर्तन करेगा और मेरी कथाओं का श्रवण करेगा वो अपना उद्धार कर लेगा और अंत में मुझे ही प्राप्त होगा। तो हमें अपना ये समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से महाराज जी ने बताया कि कोई भी दुष्ट व्यक्ति कोई कितना ही बुरा क्यों ना हो, अगर वो सिर्फ एक बार कृष्ण प्रसाद ले ले, एक बार विग्रह के दर्शन कर ले या साधु संघ में चला जाए तो वो कभी ना कभी शुद्ध होगा ही। तो कृष्ण भक्ति हमें करने से हमें इसका फल मिलना ही मिलना है। जब जीव शरीर छोड़ता है तो उसके साथ कुछ नहीं जाता, सिर्फ एकमात्र उसकी भक्ति ही जाती है। इसके अलावा महाराज जी ने हमें बताया कि किस तरह से स्त्री को व्रत का पालन करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने नियम बताए। लेकिन आज की जो नारी है वो नियमों को बंदिशें समझती है और वो भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। लेकिन अगर नारी कृष्ण भक्ति नहीं कर रही और भौतिक उपलब्धियां उसने हासिल कर ली है तो वो बिल्कुल जीरो है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। मैं एक बार फिर से हिज ग्रेस राधा गोविंद महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और बाकी भक्त पंजाबी भक्त इस्कॉन के भक्तों का भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हरे कृष्ण।
चरणों में प्रणाम करते हैं और यहाँ आए हुए सभी भक्तों को प्रणाम करते हैं। महाराज जी की असीम कृपा है कि जो हम जैसे पतित आत्माओं को भी भगवान की अद्भुत कथा का रसपान करवाकर हम सबको अनुग्रहित किया। हमने इस कथा से यह सीखा कि हम यदि भगवान को प्रणाम ही करते हैं तो भगवान हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो भगवान प्रतिपल हम सभी जीवों पर दया दिखाते हैं और इस भौतिक संसार में भी जीवन हेतु जो भी आवश्यक वस्तु है उसे बिना किसी मूल्य के प्रकृति द्वारा सुलभ करवाते हैं, किंतु जीव इतने पर भी भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। इसी अज्ञानता के कारण इस संसार में दुख झेलते हैं। श्री भगवान में समस्त गुण है और वे ही सबके आराध्य हैं, वे ही सबके पालन करता है और हम जो भी कार्य करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। महाराज जी की वाणी की मधुरता एवं सरल व रसमय शब्दों का चयन इतना मनभावन है कि कोई भी व्यक्ति यदि कथा में आकर बैठे तो आसानी से भगवान की लीला को समझकर भक्ति करने लग जाएगा और अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा। अंत में हम महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि वे यहाँ आकर हमें भगवान की लीलाएं सुनाते रहे और हम आयोजकों का भी धन्यवाद करते हैं और सेवा मंडली का भी धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा।
अभिनव सलवान धोती बहुत अच्छा लग रहा है।
हरे कृष्णा। ओम नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारी ने निर्विशेष शून्यवादी पाश्च देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवदादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे।
सबसे पहले मेरा राधिका रमन जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मेरा महाराज जी को दंडवत प्रणाम और अन्य कृष्ण भक्तों को भी मेरा प्रणाम।
और माइक के निकट मुंह करो।
महाराज जी ने हमें बताया कि दिति के मन में इंद्र से बदला लेने की भावना थी, लेकिन उनके पति कश्यप मुनि ने उन्हें भगवान से जोड़कर उनकी इस भावना को बदल दिया। थोड़ा सा भगवान बहुत दयालु हैं। अगर कोई उन्हें थोड़ा सा देता है तो वह उन्हें बहुत कुछ देते हैं, इसलिए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान इस पूरी दुनिया के मालिक हैं। उनका नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में मैं उन सभी भक्तों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस भागवत सप्ताह का आयोजन किया और मैं आशा करता हूँ कि ये भागवत सप्ताह हर साल हो। हरे कृष्ण।
अपने पिताजी को धन्यवाद। ये अरुण जी के पुत्र हैं।
हरे कृष्णा। प्रीति जी, उनके बाद मीनू माता जी,
हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं श्री श्री राधिका रमन जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तत्पश्चात कृष्ण कृपा मूर्ति श्री मूर्ति श्री श्री एसी मक्ति वेदास स्वामी श्री प्रपाद जी को मेरा प्रणाम। श्री राधा गोविंद स्वामी जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अंत में मैं सभी प्रभु जी व माता जी को जो भागवत सुनने के लिए आए हैं मेरा प्रणाम। इस भागवत सप्ताह में महाराज जी के मुखाविंद से हमने दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश की तथा मुख्यतः रानी दिति और महाराज कश्यप की कथा सुनी। इस कथा से हमें यह ज्ञात हुआ कि यह पूरा विश्व दक्ष प्रजापति की कन्याओं से ही उत्पन्न हुआ है। भागवत में यह भी कहा गया है कि जो कोई भी सुबह या शाम दक्ष प्रजापति की कन्याओं का स्मरण करता है उन्हें भगवान का धाम प्राप्त होता है। अपने पुत्रों हिरण्यकशिपु और हिरणाक्ष की मृत्यु का बदला रानी दिति इंद्र से लेना चाहती थी, जिस कारण उन्होंने अपने पिता अपने पति कश्यप जी की बहुत मन से सेवा की और बदले में उन्होंने ऐसा पुत्र मांगा जो अमर रहे और इंद्र को मार डाले। परंतु महाराज कश्यप ने उन्हें भगवान से जोड़कर उनका हृदय परिवर्तित कर दिया। जब हम अपने मन से ही भगवान की पूजा करते हैं तो हम शास्त्रों और गुरुओं की अवहेलना करते हैं, इसलिए हमें भगवान की पूजा गुरुओं और शास्त्रों के नियमों के अनुसार ही करनी चाहिए, जिससे हमारे हृदय में भी बदलाव आ सके, जिस प्रकार असुरों की रानी दिति में आया। भगवान कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, अर्थात सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस संसार में भगवान के नाम से शुद्ध और कुछ नहीं है। हमें भगवान के प्रति कोई दोष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, चाहे कितना ही कष्ट क्यों ना मिले, चाहे कोई कितना ही गिरा क्यों ना हो। लेकिन अगर वे भक्तों के संग में आए, भगवान का नाम ले, कथा को सुने, भगवान के विग्रहों को देखे, तो उसका अनादिकालीन अविद्या का दोष भी दूर हो जाता है। यदि कोई सुखों को पाना चाहता है तो भी उसे भगवान के संपर्क से, भगवान से ही संपर्क जोड़ना चाहिए। प्रत्येक जीव का भगवान कृष्ण से ही संबंध है, चाहे मन में कोई भी लालसा क्यों ना हो। श्रियं विष्णुं च वादा वा आशिषं प्रभावुभो भक्तया संपूज्ययं नित्यं यदीयेच्छित सर्व संपदा। अर्थात जो सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं उसे चाहिए कि यदि प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, क्योंकि वे दोनों ही समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने एवं श्रेष्ठ वरदानी हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मनुष्य जीवन भगवान को समझने के लिए और प्रेम करने के लिए ही मिला है। मनुष्य भगवान का सब तरह से ऋणी है, तो ऐसे भगवान को प्रसन्न करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण,
धन्यवाद।
तो हमारे बीच में वेस्ट जोन के चेयरमैन
करूंगा कि आप मेरे क्षेत्र में इसी तरह आशीर्वाद का हाथ रखें और समय समय पर दर्शन देते रहें ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों का भला हो।
तो हम राकेश जोशी जी का धन्यवाद करते हैं।
चरणों में मेरा को
भागवत सप्ताह के माध्यम से सर्वसमर्थ भगवान श्री हरि के भक्ति का अद्भुत महिमा सुनने को मिला, जिसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। सबका किसी भी स्तर के व्यक्ति के लिए सर्वहित सर्वविध भगवत भक्ति से ही संभव है, यह रहस्य कश्यप जी जानते हैं। दीति के कुत्सित विचारों को सुनकर भी भगवत भक्ति में नियोजित किए और दीति तत्परता पूर्वक अपने अभीष्ट की पूर्ति के लिए पुनसोन व्रत करने लगी, लेकिन देवराज इंद्र इसको नहीं सह पाए, छिद्रान्वेषण करके गर्भ में प्रवेश किए और वज्र का संधान किए, लेकिन अमोघा भगवत भक्ति के प्रभाव से दीति का बाल बांका नहीं हुआ। श्री सुखदेव गोस्वामी प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ भगवत भक्ति की महिमा का निरूपण कर रहे हैं। नम मार दितेर गर्भ श्रीनिवासानुकंपया बहुधा कुलिशा छोड़ो दौड़े स्तेर यथा भगवान। हे महाराज परीक्षित, जिस प्रकार आपकी माँ के भक्ति के प्रभाव से द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र आपका नाश नहीं कर पाया, उसी प्रकार दीति के गर्भस्थ शिशु का नाश नहीं हुआ वज्र के संधान से भी। यह भगवान श्रीनिवास की अनुकंपा है, भक्ति का प्रभाव है। यहाँ तक सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सक्रिय दिष्टादि पुरुषम पुरुषो याति साम्यतम संबद सरम किंचिदोनम दित्या यद हरि अर्चित। अरे दीति तो एक साल, कुछ ही कम एक साल व्रत की है, एक बार भी कोई आदि पुरुष भगवान की भक्ति करता है तो वह भगवान की सम्यता प्राप्त करता है। भगवान श्री राम वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, कहते हैं कि वह एक बार मेरे चरणों में आकर प्रणाम करता है और यह कहता है, हे श्री राम मैं आपका हूँ, तो अभयम सर्वदा तस्मयी ददा मे तद व्रतम मम। मैं उसको सदा सर्वदा के लिए अभय कर देता हूँ, भय मुक्त कर देता हूँ, यह मेरा व्रत है। इस प्रकार देवराज इंद्र जब मरुदगण के साथ दीति के गर्भ से बाहर आए तो दीति के सामने कहते हैं कि यह आश्चर्यजनक दृश्य देखकर मैं समझ गया कि निश्चित रूप से यह महापुरुष की पूजा का प्रभाव है। ततस्तत् परमाश्चर्यम् वीक्ष्याध्यवस्तम् मया महापुरुष पूजायाम् सिद्धि कप्यानुसंगिणी। तो इस प्रकार महाराज श्री अपने प्रवचन में बतलाए कि वास्तव में राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, किसी न किसी रूप में किसी की जो रक्षा हो रही है भगवान की कृपा है। इस प्रकार भगवान अगर किसी को चाहे रक्षा करना तो कोई उसका नाश नहीं कर सकता, और किसी को मारना चाहे तो बचा नहीं सकता। हिरण्यकश्यपु के सारे बाउल को तोड़कर भगवान ने मार डाला। प्रहलाद महाराज इसका अनुभव करते हुए नृसिंहदेव की स्तुति में कहते हैं, बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह नारतस्य चा गदमुदन वति मज्जतौ न तप्तस्य तत् प्रतिविधिर्य इहां यशेष्ट तावत् विभो तनुभृतम तदुपेक्षितानम। हे नृसिंहदेव, आप देव द्वारा उपेक्षित व्यक्ति को कोई किसी भी प्रकार से नहीं बचा सकता। वास्तव में माता पिता स्नेहवान तभी तक हैं जब आप रक्षा करना चाहते हैं, और आपके द्वारा उपेक्षित होने पर स्नेहमय जननी के गोद में भी बच्चे मरते हुए देखे जाते हैं, और डॉक्टर या औषधि तभी तक सफल है जब आप रक्षा करना चाहते हैं, नहीं तो यह किसी काम का नहीं है। एक छोटे से नाव में लोग समुद्र में तैरते रहते हैं जब तक आप चाहते हैं। अगर आपके द्वारा वो उपेक्षित हुआ, कोई किसी को नहीं बचा सकता, जैसे मेरे पिता के साथ हुआ। तो हमें बहुत बड़ा आश्वासन मिला, भगवान सर्वसमर्थ हैं, इनकी भक्ति सर्वविध हितकारिणी है, भक्ति का आचरण हम सबके लिए स्वाभाविक कर्तव्य है। ऐसे प्रभु जो सर्वसमर्थ सबके पालक हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, और इस प्रकार के शुभ अवसर प्रदान करने वाले श्रीमान अरुण प्रभु और राजेंद्र लंबा जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही महाराज श्री के पूर्ण स्वास्थ्य के लिए राधिका रमण जी से करबद्ध प्रार्थना। जय श्री राधे,
हरे कृष्ण। तो इसके बाद महाराज जी के एक और शिष्य हिज ग्रेस वृंदावन चंद्र प्रभु जी, तो उनसे प्रार्थना है, वो कृपया आए अनुमोदन करेंगे।
हम लोग इस बार दीति के चरित्र के विषय में श्रवण किए। यह प्रसंग बहुत छोटा है साइज के दृष्टि से, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल जीवन में इसका बहुत मेल है, बहुत रेलिवेंसी है। ये हमारे सामने समस्या है, प्रायः सब लोग व्यक्त करते हैं कि हम भगवान का भजन करना चाहते हैं, अपने हृदय में अच्छा भाव लाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग चाहते हैं, बाद में अफसोस करने लगते हैं, अपने मनोभाव पर अफसोस करते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि हमारी चेतना इतनी निम्न स्तर पर जाए, लेकिन प्रायः चेतना फिसल जाती है। तो इस दृष्टि से इस प्रसंग का बहुत महत्व है। जैसा हम लोग देखे कि दीति का हृदय कामनाओं से भरा है और उसमें हिंसक विचार हैं, वह एग्रेसिव है, इंद्र की हत्या करना चाहती है, लेकिन कश्यप जी की बात मान करके और वह उनके द्वारा बतलाए हुए नियम का पालन करती है। मैं यह कह रहा हूं कि दीति के हृदय में चाहे जो भावना हो, चाहे उसकी चेतना जिस तरह की हो, हिंसक हो, विविध प्रकार की अभिलाषा से पूर्ण हो, लेकिन उसका एक गुण है कि जो सर्वज्ञ कश्यप जी हैं, भगवान कश्यप, वो दीति के जीव के हित विधान को जानते हैं, तो उनके प्रति उसकी निष्ठा है। उसके निष्ठा का परिचय तब मिलता है जब इंद्र की चिंता बढ़ जाती है। यद्यपि उसके मन में हिंसक विचार हैं और उपदेश दिया जा रहा है ठीक हिंसा के विरुद्ध, प्रथम आचरण है हिंसा से बढ़ जान, और उस नियम में वह इतनी दत्चित होकर के संलग्न है कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि चिंता तीव्राम गतः शक्र, उसके निष्ठा को देख करके शक्र मतलब इंद्र चिंता में पड़ गए। तो हमारे कहने का आशय यह है कि जब हम में और कोई योग्यता हो या न हो, हमारी चाहे जितनी भी निम्न स्थिति हो, लेकिन जो सर्वज्ञ उपदेष्टा हैं, शास्त्रों की जानकार परम ब्रह्म और शब्द ब्रह्म में निष्णात उपदेष्टा हैं, इनमें यदि हम निष्ठा रखते हैं तो उस निष्ठा के परिणाम स्वरूप हमारे चित्त का उत्थान निश्चित हो जाएगा। और ऐसा हम लोग अनुभव कर रहे हैं, सब लोगों का अनुभव है। आप सुने कि अरुण जी का और राजेंद्र प्रभु के निष्ठा का क्या परिणाम आ रहा है, उनके निष्ठा का यह फल है कि कितना संघर्ष करके और कितना परिश्रम करके इस आयोजन को कर रहे हैं। तो इस निष्ठा का, इस आयोजन का फल आप प्रकट देख रहे हैं। तो इस प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है कि चाहे हम जिस स्थिति में हैं, इस जानकार उपदेष्टा में हम निष्ठा रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे, तो हमारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम श्री राधा राधिका रमन जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हैं, और इसी के साथ श्री प्रभुपाद महाराज जी के चरण कमलों में, और श्री राधा गोविंद गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में, और उपस्थित समस्त वैष्णव भक्तों के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पे जो ये प्रसंग हुआ पुण्य सवन व्रत का, तो महाराज जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से इस प्रसंग को समझाया, और इस प्रसंग में भक्ति की विशेषता का वर्णन किया गया कि भगवान श्री कृष्ण की ये जो भक्ति है, ये जीव की सारी इच्छाओं को तो पूर्ण करती है, इसके साथ साथ ये जीव को शुद्ध भी कर देती है। ये इस कथा में जो है मुख्य तौर पर समझाया गया, जैसे कि दिति महारानी जो है उनका हृदय एकदम शुद्ध हो गया, और उनके हृदय में जो इंद्र के प्रति पहले इतना द्वेष भाव था वो एकदम समाप्त हो गया। तो ये वास्तविक बात है कि ये सिर्फ भक्ति की ही विशेषता है कि न सिर्फ जीव जो है अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से, जिसकी जो मर्जी इच्छा हो श्री कृष्ण उसको पूरा करने में समर्थ हैं, और प्लस श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय को शुद्ध भी कर देते हैं। तो महाराज जी की बहुत अच्छी शैली है, महाराज जी की ये विशेषता है कि किसी भी प्रसंग को, चाहे वो भागवत का कैसा भी कठिन से कठिन प्रसंग क्यों न हो, बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही अच्छे ढंग से इस प्रकार समझा देते हैं कि हम जैसे मूर्खों को भी बात जो है समझ में आ जाती है। तो महाराज जी जो है बहुत सुंदर कथा करते हैं कि वास्तव में भगवान कृष्ण की बहुत असीम कृपा है महाराज जी के ऊपर, कि कृष्ण जो है महाराज जी के मुख से निकलते ही रहते हैं। वास्तव में भगवान जो है अपने शुद्ध भक्तों के मुख से जो है निकलते हैं, तो श्री कृष्ण महाराज जी के मुख से निकलते हैं कथा के माध्यम से, और महाराज जी के मुख से कथा सुन के श्री कृष्ण हमारे कानों के छिद्रों के माध्यम से हमारे हृदय में जो है प्रवेश करते हैं। तो ये किसी भी जीव का इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण किसी जीव से अपना जो है गुणगान कराएं। तो ये महाराज जी को बहुत बड़ा सौभाग्य श्री कृष्ण जी ने दे रखा है कि वो महाराज जी से अपना गुणगान जो है करवाते ही रहते हैं, करवाते ही रहते हैं। और आज महाराज जी की यहाँ कथा है, कल यहाँ कथा है, इस प्रकार वो कृष्ण का जो है इतना गुणगान करते हैं। तो ये श्री कृष्ण की बहुत असीम कृपा है महाराज जी के ऊपर। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो महाराज जी के स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखें, और वो हमेशा इस प्रकार जो है भागवत की सुंदर कथाएं करते रहें, और हम लोग जो है सुनते रहें, इसी प्रकार से हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और कोई कलयुग में जो है रास्ता नहीं है। तो हम इस कथा के जितने भी व्यवस्थापक हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राजेंद्र लांबा प्रभु, अशोक ओबेराय जी और सतीश लांबा जी, अरुण शर्मा जी और उनके साथ और भी बहुत लोगों ने सहयोग दिया है, और जो मंदिर से भक्त आए हैं इनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं, और आप सब जो यहाँ पे उपस्थित हैं इतनी भारी मात्रा में, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि भक्तों के संग में कथा सुनने का एक अलग ही महत्व है। और महाराज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और महाराज जी से प्रार्थना करते हैं तो इसी प्रकार आते रहें और अपनी कृपा जो है करते रहें। हरे कृष्ण।
बहुत धन्यवाद। ठीक है, अपनी प्रतिष्ठान में जिन भक्तों ने सहयोग किया है, संकल्प किया है, व्यवस्था की है, निश्चित वे भगवान श्री कृष्ण के कृपा पात्र हैं, भगवान अपना समझते होंगे उनको। यह कार्य ऐसा है जो परहित के लिए है, दूसरों के हित के लिए है, और आप अपना अमूल्य समय निकाल करके आए बहुत दूर दूर से। दिल्ली में पूरब से पश्चिम आना या पश्चिम से पूरब जाना, दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण जाना बहुत समय ले लेता है, इतना ट्रैफिक है सब कुछ, फिर भी आप आए और भगवान की बात सुने, आयोजकों का उत्साह बढ़ाए, उसके लिए आप सबको भूरी भूरी धन्यवाद है। इसी तरह भगवान कृष्ण से प्रेम बढ़ाना चाहिए। इस प्रसंग का अनुमोदन आपने सुना, विशेष करके बच्चियों ने बहुत अच्छा अनुमोदन किया, शुरू शुरू में आप लोगों ने सुना, उन्हें मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भगवान कृष्ण उनके मन को भी अपने में लगाए रखें, हमेशा भगवान कृष्ण से उनका प्रेम बढ़े, जीवन सुखी रहे। और वास्तव में कृष्ण के अलावा और कोई भरोसा कहाँ है। जैसे आपने सुना कि माता दीति जी अपने पति से इच्छा करती हैं कि हमको पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध कर दे, ये करे वो करे, एक स्वाभाविक पत्नी अपने पति पर भरोसा करती है, पुत्र पिता पर भरोसा करता है, भाई भाई पर भरोसा करता है। इस तरह समाज में देखा जाता है, प्रजा जो है राजा पर भरोसा की है, करती है। इस संसार में भरोसा होता है और करना भी चाहिए, लेकिन राजा हो चाहे पति हो पिता हो, वह भी किसी पर आश्रित है, वो स्वतंत्र नहीं है। जैसे कश्यप जी कुछ स्वतंत्र नहीं है कि वे दीति के लिए कर दें, इतना ही कर सकते हैं कि उसको दीति को भगवान के शरण में भेज सकते हैं। अंतिम भरोसा तो कृष्ण का ही है, पति भी बेचारा कुछ नहीं कर सकता है। पति अगर हित करेगा पत्नी का, या शिष्य का हित गुरु करेगा, प्रजा का हित राजा करेगा, तो यही सबसे बड़ा हित है कि हित करने वाले के पास भेज दिया जाए। दीति को कश्यप जी ने समझाया कि प्रिय तो मैं अगर चाहती हो कि तुम्हारे सारे मनोरथों की पूर्ति हो, तुम विष्णु की शरण लो, भगवान का भजन करो, वे सब इच्छा पूरा कर देंगे। इसी तरह उन्होंने माता अदिति को भी उपदेश किया है जो आठवें स्कंध में है, कहते हैं तुम्हारी इच्छा अगर ऐसी है तो तुम भगवान विष्णु का भजन करो। तो गुरु हो चाहे पति हो, चाहे राजा हो या पिता हो, उनका कर्तव्य है अपने अधीनस्थ को, अपने शिष्य को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को, अपनी प्रजा को भगवान कृष्ण की शरण में भेजना, वही सुख देंगे, और किसी में कुछ दम नहीं। अगर दम है तो इतना ही है कि वो व्यक्ति भगवान के बारे में बता करके उनके पास भेज सकता है, यही सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ी सहायता है। तो इस प्रसंग से यहाँ शिक्षा मिली कि वास्तव में कृष्ण ही अल्टीमेट शेल्टर हैं, आश्रय हैं सबके, वो ब्रह्मा जी के भी हैं, शिव जी के भी हैं, करोड़ों करोड़ों माता पिता हैं उनके भी आश्रय हैं, गुरु के आश्रय हैं, राजा के आश्रय हैं, भगवान अल्टीमेट आश्रय हैं, वास्तविक शरण हैं। ऐसे प्रभु को श्रीमद् भागवतम द्वारा या वैष्णवों के संग द्वारा, प्रवचन द्वारा हमें पहचानना चाहिए, और भगवान कृष्ण के प्रति दिन पर दिन विश्वास बढ़ाना चाहिए, और भक्ति में लगे रहना चाहिए। और भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भक्ति है भगवान के नाम का उच्चारण, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आयोजकों को इसी प्रकार की सद्बुद्धि भगवान दें, जिसे अपने धन अपने शरीर आदि का उपयोग दूसरों के हित के लिए करें, भगवान के तरफ सबका चित लगे, सबका दुख कम हो। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया वैदिक प्रार्थना है, उस प्रार्थना के साथ मैं अपने प्रवचन को यहाँ विश्राम दे रहा हूँ। सभी सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, सभी निरोग रहें, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी अच्छा दिन, सबका अच्छा दिन जाए, सब अच्छा देखें, किसी का अमंगल ना हो, किसी को दुख ना हो। माँ कश्चित दुख भाग भवेत, किसी को कोई दुख ना हो हे भगवान, और सबका मंगल हो, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो। इसी शुभकामना और प्रार्थना के साथ मैं भगवान कृष्ण से ये विनय करता हूँ कि वे सबको सुखी रखें और अपने चरण कमलों में सबकी मति लगाए रखें। हरे कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी, जय श्री राधे, जय श्री राधिका रमण,
हरे कृष्ण। तो महाराज जी का